ने सारथी को, सारथी के शरीर में बाण लगा दिए और एक बाण लगा करके राम जी का जो रथ था उस रथ के ऊपर लगी हुई ध्वजा, उस ध्वजा को काट दिया। और उसके बाद रावण ने इंद्र के द्वारा भेजे हुए जो घोड़े थे उन घोड़ों को भी उसने बाणों से बीन दिया। देव, गंधर्व, चारण, दानव ये सब उस समय में विषाद को प्राप्त हो रहे थे। राम जी महाराज को भी इस प्रकार से विषादग्रस्त देख करके सिद्ध, महर्षि, बानर, विभीषण सब जो है व्यथित हो रहे थे। ऐसा लगने लगा कि मानो राम रूपी चंद्रमा को ये रावण रूपी राहु ग्रस लेगा। इस प्रकार से दो सागर जिस प्रकार से टकराते हों, दो सूर्य मानो लड़ते हों, ऐसा लगने लगा। उस समय में अदृश्यतः कबंधांक संसक्तो धूम केतुना, ये जो आकाश में त्रिशंकु जो कि इक्ष्वाकुओं का पूर्वज है वो भी धूम केतु के साथ मिला हुआ दिखने लगा। ऐसे राम जी महाराज रावण के साथ में दिखाई दिए। रावण ने की 20 भुजा और रावण के 10 सिर वहां पर प्रकट हुए दिखाई दिए और वो मैनाक पर्वत समान विशाल दिखाई देने लगा। राम जी महाराज ने बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा की और रावण ने उन बाणों को काटना चालू किया। राम जी महाराज बड़े क्रुद्ध होकर राक्षसों के ऊपर बाणों की वर्षा करते हैं। राम जी के बाणों से राक्षस घबराते हैं। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई सिंह और व्याघ्र वाला पर्वत है वो संचलित होता है, ऐसे रावण संचलित होने लगा। उस समय में समुद्र में क्षोभ पैदा हुआ और पशु पक्षी सब कठोर वाणी बोलने लगे, तरह तरह के उल्कापात होने लगे। राम जी महाराज ने देखा कि रावण तरह तरह से हमारे सामने माया फैलाता है। आकाश में रहने वाले देवता, गंधर्व, उरग, ऋषि, दानव, दैत्य, गरुड़ ये सब आकाशचारी अपना अपना स्थान छोड़ करके राम रावण का युद्ध देख रहे हैं। दोनों के पास कैसे कैसे शस्त्र हैं, इन बातों को भी देख रहे हैं। देवता, असुर सब इस समय में अपने अपने ढंग से राम और रावण का युद्ध करते हुए कोई तो राम की जय बोलते हैं और कई रावण की जय बोलते हैं। दोनों की जय जयकारे करके वे सब इनको युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। राम जी महाराज उस समय में रावण के सामने निडर निर्भय होकर के अपने वज्र के समान कठोर बाण रावण के ऊपर चला रहे हैं और रावण के बाणों को भगवान काटते चले जा रहे हैं। रावण भगवान के बाणों के सामने बहुत जो है घबराने लग गया। उसके बाद रावण ने एक शूल उठाया, ऐसा भयंकर त्रिशूल उठाया कि जिसके देखने मात्र से लोग डर जाते थे, बड़ा भयंकर था वो। विदीर्ण करने में माने, देखो एक तो यूं विदीर्ण करना फाड़ने में और एक अंदर जाकर प्रवेश करने में, तो वो विदीर्ण करने में और भेदन में दोनों में बड़ा प्रबल वो था त्रिशूल। उसको यूं लेकर के यूं काट भी देवे किसी को और अंदर घुसा दिया तो वो जो है बहुत जल्दी अंदर भी चला जाए। ऐसा जो त्रिशूल था उस त्रिशूल को लेकर वो आया, उसके चारों तरफ राक्षस थे, सूरवीर राक्षस थे और उस त्रिशूल को लेकर उसने बहुत जोर से नाद किया। लाल उसके नेत्र हो गए, पृथ्वी कांपने लग गई, अंतरिक्ष में हाहाकार हो गया, दिशाएं प्रदिशाएं सब सब अपना अपना स्थान खो बैठे। रावण का वो दारुण त्रिशूल देख करके बड़ा नाद होने लगा और रावण स्वयं उस त्रिशूल को लेकर के जोर से चिल्लाने लगा। सागर के अंदर क्षोभ पैदा हो गया, सारे प्राणी डर गए और वो महाबली रावण उस त्रिशूल को लेकर के और राम को निशाना लगा करके जोर से आवाज करते हुए कहने लगा, राम जिस शक्ति से मैंने लक्ष्मण को मारा था वो शक्ति किसी प्रकार से बच गई मारने से, लेकिन ये सारे वज्र का सार शूल है, इस शूल को अब मैं तेरी छाती के लिए फेंक रहा हूँ, तेरे अभी प्राण निकाल देगा। और आज मैं राक्षसों को, सूरवीर राक्षसों को जो मर गए थे, उन सब को तेरे खून से जलांजलि दूंगा, उनको रक्तांजलि दूंगा। राम, तुझे हमसे युद्ध करते हुए बहुत समय हो गया है, हे ये त्रिशूल तेरे सामने आ रहा है। सब प्राणी डर गए। वो सनसनाता हुआ त्रिशूल राम जी की तरफ गया, उसमें तरह तरह से बिजलियां चमक रही थी। और उस समय में आठ उसमें घंटे थे, वो जोर से आवाज कर रहे थे। आकाश के अंदर वो त्रिशूल गया तो सब हाय त्राही करने लग गए। देवता लोग जिनके ऊपर फेंका ही नहीं गया था, देवता लोग यत्र तत्र सर्वत्र जाकर छिप गए। और राम जी महाराज ने तीखे तीखे बाणों से उस त्रिशूल को काटने के लिए खूब बाण छोड़े। रावण ने इस बीच में राम जी के सारे बाणों को काट दिया। राम जी के बाण भी निष्फल हो गए और रावण का भेजा हुआ वो शूल राम की तरफ सनसनाते हुए आ रहा था। उस समय में मातली ने याद दिलाया कि महाराज, इस शूल को यदि समाप्त करना हो तो अपने रथ के अंदर एक शक्ति पड़ी है। राम जी महाराज ने तत्काल वो शक्ति ली और शक्ति लेकर के आठ घंटे वाली शक्ति को लेकर जोर से फेंका। शक्ति ने जाकर तत्काल उस शूल को तोड़ दिया और शक्ति के त्रिशूल के टूट जाने के बाद वो पृथ्वी के ऊपर गिर गया। सबको बहुत शांति का अनुभव हुआ। रावण के घोड़े वगैरह सब नष्ट हो गए। इस प्रकार से फिर राम जी महाराज ने तत्काल रावण के ऊपर बाणों की वर्षा की। उस समय में रावण घबरा गया। रावण के चित्त पर विचार आया कि इस शूल का प्रयोग तो मैंने अपनी अंतिम शक्ति लगा करके किया था। रावण के एकदम छक्के से छूटने लगे। राम जी महाराज ने उस समय बाणों से उसके ऊपर वर्षा की तो दूसरे बाण जगह जगह शरीर में लगे, तो ऐसा लगने लगा कि मानो रावण के शरीर के ऊपर लाल फूलों की माला पहनी हुई हो। राम के बाण से रावण घायल हो गया और फिर भी वह बड़ा क्रोध करने लगा। उस समय में उसकी आंखें बाहासी आ गईं, उसका हृदय टूट गया। वो भीतर से मानने लग गया कि मैं राम को जीत नहीं सकता हूं, क्योंकि ऐसा युद्ध आज तक किसी ने मेरे साथ नहीं किया है। राघवम रावणो बाणैः तटाकम् इव पूरयन्। रावण था वो बाणों के द्वारा राम जी के ऊपर ऐसी वर्षा कर रहा था जैसे कोई तालाब से पानी से तालाब भर जाए। ऐसे राम को चारों तरफ से आच्छादित कर दिया। खूब उसने बाण राम जी के ऊपर बरसाए, पर काकुस्थो न प्रकंपते। राम जी महाराज किसी प्रकार से हिले डुले भी नहीं, कंपित नहीं हुए। इस प्रकार से बाणों के द्वारा राम जी महाराज ने उन सब बाणों को दूर कर दिया। वो निशाचर फिर भी बलवान हजारों हजारों बाण राम जी के ऊपर छोड़े और राम जी महाराज भी अपनी तरफ से बाण छोड़े। किसी के पास कोई शक्ति कम नहीं हुई। अपने सामने बढ़ते हुए रावण को देखकर राम जी ने हंस करके बड़े कठोर शब्दों में कहा, रावण याद रखो, तुम अब मरते समय में अपने पाप को सुन लो। जनस्थान में हम लोगों को माया के अंदर मोहित करके तुम सीता को हर के लेके आए थे। सीता उस समय आश्रम में विवश होकर बैठी हुई थी। उस अकेली सीता को तुम जबरदस्ती लेकर आए हो। मेरे से और लक्ष्मण से शून्य आश्रम को तुम लेकर आए हो। ये तुम्हारी शूरवीरता है। आज तुम शस्त्र लेकर आए। यही शस्त्र तुम यदि वहां लेके आते तो हम तुम्हें बहुत बड़ा शूरवीर मानते। हे शूरवीर, तू एकांत में उस स्त्री को लेकर के, अकेले में उस स्त्री को लेकर के यहां लाकर तू अपने आप को बहुत बड़ा पराक्रमी मानता है। तूने अपनी मर्यादाओं का नाश किया है। तू निर्लज्ज है। तेरा तू चरित्रों से गिरा हुआ है। तू अभिमान के कारण से अपने पास आई हुई मृत्यु को न जान करके भी मैं शूरवीर हूं इस प्रकार से अभिमान करके हमारे सामने मरने के लिए आया है। जो भी व्यक्ति मरता है तो मरने से पहले व्यक्ति अपनी तरफ से हो सकता है उतना पुण्य करता है, लेकिन तू मरते मरते भी पाप की गठरी बांध करके मर रहा है। मैं शूरवीर हूं, मैं शूरवीर हूं, इस अभिमान के अंदर तूने कितना बड़ा युद्ध छेड़ दिया है। नहीं बल लज्जास्ती, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तू सीता को एक चौर की तरह से आया, और तू है जिस वेश में नहीं आकर के और वेश में आया, चोरी से भी आना और फिर वेश भी बदलना। मेरे पास मेरी सीता होती फिर तू आता लेने के लिए तो मैं तुझे बता देता कि सीता को कैसे ले जाया जाता है। खैर हुआ सो हुआ, अब समय तो बीत गया, अब पिछले क्रोध को पूरा करने का मेरे लिए समय आ गया है। अद्य त्वाम सहायक तीक्ष्णी नयामी यम साधनम, पता नहीं, अब मैं अपने बाणों के द्वारा तुम्हें यमराज के घर भेजता हूं और देखना तुम्हारे मांस को खाने के लिए आकाश में गीद उड़ रहे हैं, श्याली चिल्ला रहे हैं और मेरे बाण की अब तुम प्रतीक्षा करो। इस प्रकार से राम जी ने उनको बुरी तरह से फटकारा। तो रावण उस समय उनके ऊपर खूब बाणों की वर्षा करने लगा। राम जी महाराज के सामने वो टिक नहीं सका। राम जी महाराज बहुत जल्दी जल्दी उसके ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे थे। अब भाई वर्षा करते करते रावण घायल हो गया। मरणार्थाय वर्तन्ते मृत्यु कालोभ्य वर्तते, अब जो है उसका उसके मर्म स्थल पर जब बाण लगे रावण बेसुध हो गया और लंबी लंबी श्वास लेने लगा। तब सूत ने, उनके सारथी ने तत्काल रणभूमि से रावण को हटा लिया और रणभूमि से बाहर उसको ले गया। बाहर ले जाने के बाद थोड़ा रावण के ऊपर पानी छिड़का और उसको सुलाया, सुस्ताया। सुस्ताने के बाद रावण ने सारथी शिकारे, सारथी ये क्या काम किया, मेरा शत्रु मुझे ललकार रहा है और तुम मुझे शत्रु सेना से लाकर आराम करवाते हो। हमारा आराम ऐसा नहीं होता है सारथी, हमारा आराम तो ऐसा होता है कि बस फिर बाद में वो लंबाई हमको पसरना पड़ता है। युद्ध भूमि का आराम कुछ और होता है। ये शत्रु क्या समझेंगे कि रावण कायर था, जान बचा के भग गया। देखो हम लोग बाण सह सकते हैं, मरना सह सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी शत्रु की कड़वी बात नहीं सह सकते। तुमने हमारी अवज्ञा की है, इस कारण से तुमने स्वच्छंदता पूर्वक यहाँ लाकर हमारा अपमान किया है। हमारा यश तुमने मिट्टी में मिला दिया है, शत्रु का यश तुमने बहुत बढ़ाया है। क्या बात है, क्या शत्रु मुझे इस काम से मुझे कायर नहीं समझेगा, अथवा क्या शत्रु ने तुमको कुछ लालच दे दिया कि तुम एक बार उसको रणभूमि से ले जाना ताकि उसका अपमान हो जाए? कुछ न कुछ जरूर हुआ है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। तुमको शत्रु ने कुछ पैसा दिया है या तुम शत्रु से मिले हुए हो, मुझे वहां युद्ध भूमि से लेकर क्यों आए? रावण की कठोर वाणी को सुनकर के हितबुद्धि रखने वाला सारथी रावण से बड़े अन्याय के साथ कहने लगा, हे राक्षसराज, मैं सारथी हूं, सारथी को किसी युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। न तो मैं डरावा हूं और न मैं मूर्ख हूं और न ही मुझे किसी प्रकार से कोई लालच दिया गया है। न मैं युद्ध धर्म को भूला हूं, न मेरे मन में आपके प्रति स्नेह की कमी आई है। मैंने आपके यश की रक्षा के लिए युद्ध भूमि से अलग लाकर आपको रखा है। आपको महलों में तो नहीं लाया हूं ना, आपको कोई मैं ऐसी जगह तो नहीं ले गया हूं ना कि जिसमें कोई यह कहे कि आप भग के आए हो। हम रणभूमि से थोड़ी देर बाहर लाए, ये युद्ध का नियम है। युद्ध से एक बार अपने रथी को अलग करके विश्राम दिलाना ये सारथी का धर्म है। मैं क्यों यहां लाया हूं कि जिस प्रकार से नदी का वेग जब प्रबलता से बहता है तो अनेक मिट्टियों को, मिट्टी के ढेरों को वो साफ कर देता है, ऐसे राम के बाण रूपी वेग के सामने आप बालू मिट्टी के ढेर के समान थे, इसलिए हम आपको इधर लेकर के आए हैं। शत्रु का गुणगान करके मैं आपके हृदय को तोड़ना नहीं चाहता हूं, पर महाराज आप थक गए हो, युद्ध करते करते थक गए हो, आपके अंदर वो शक्ति नहीं रही। देखिए आकाश में ये अब आप अपशकुन देखिए, मैं देश काल सब कुछ जानता हूं। सारथी वो आगे के योद्धा को भी देखता है, उसके बाण शस्त्र देखता है। सारथी रथ चला चला चलाता अपने रथी की ओर भी देखता है, रथी की ओर देखते हुए उसके शस्त्र का निशाना भी देखता है, दोनों को देखता है। देखते देखते यदि रथी उसका सही नहीं चलता है तो उसको सही बात कहने के लिए आदेश भी देता है, और यदि वो घायल होता है तो उसको रणभूमि से बाहर भी ले जाता है। रणभूमि से बाहर ले जाते हुए उस पर कोई बाण की वर्षा नहीं करते। युद्ध के नियमों को सब मैं भली बात ही जानता हूं। महाराज इस समय में आपका जो रथ है वो ठीक ढंग से नहीं चलता है। स्थल निम्नानी भूमेष्ट समानी विषमाणी से देखो, इसके यहां अभी युद्ध भूमि भी उल्टी पुल्टी दिखाई दे रही है, यह भी मृत्यु का लक्षण है। और किस समय में रथ को विश्राम करें, किस समय में रथ को चलाएं, इसका अपना अपना नियम होता है। मैंने महाराज आपके प्रति बहुत स्नेह किया है, आपका मैंने नमक खाया है, इसलिए मैं आपके नमक को खराब नहीं कर सकता हूं, आज्ञा दीजिए क्या करना है। रावण ने कहा वो सारथी युद्ध भूमि की ओर ले चलो, मैं युद्ध करना चाहता हूं। ऐसा कहकर के रावण ने एक बहुत अच्छा उपहार सारथी को दिया कि तुमने अच्छा काम किया। सारथी लौट करके वापिस आया। जब इधर रावण युद्ध से घायल हो गया था, पीछे से अकस्मात देवताओं के साथ अगस्त्य ऋषि आकाश मार्ग से आकर के राम जी से कहने लगे, हे राम सुनो, मैं तुमको एक बहुत अच्छा आदित्य स्तोत्र का पाठ देता हूं, तुम इस आदित्य स्तोत्र का भीतर से पाठ करो, ये सब प्रकार का मंगल देने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है, चिंता और शोक को दूर करने वाला है, आयु बढ़ाने वाला, यश बढ़ाने वाला, तेज बढ़ाने वाला है। तुम भास्कर के समान, आदित्य के समान और देदीप्यमान हो जाओगे, तेजस्वी हो जाओगे। देवासुर गणान लोकान पाति गवस्थी भी, ये आदित्य स्तोत्र जिस प्रकार से सूर्य सब लोगों को प्रकाशमान करते हैं, ऐसे इसका पाठ करने वाला होगा, उसको भी ये प्रकाशित करने वाला होगा। एष ब्रह्मा च विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र धनद कालो यम सोमो यपाम पति। देखो ये यही सूर्य ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है, यही स्कंद है, यही महेंद्र है, पितर वसव साध्य वसु अश्विनु अश्विनी कुमार मरुदगण मनु, ये सब सूर्य का स्वरूप है। सूर्य के अनेक नाम है, आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गवस्तिमान इत्यादि इत्यादि जो इनके नाम है, इन नाम को लेकर के सूर्य को नमस्कार करो। नमो नमः सहस्रांशु आदित्याय नमो नमः, नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, इस प्रकार से इनको नमस्कार करो। तमोगुण को, ये अंधकार को दूर करने वाला और ठंडक को दूर करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला ये सूर्य है, सूर्य को तुम नमस्कार करो। ये सूर्य आदित्य हृदय, इसका पाठ करोगे तो सोते हुए जागते हुए सब परिस्थितियों में आपकी रक्षा होगी। बड़े बड़े देवता लोग और यानी कृत्यानि लोकेशु सर्वेशु परम प्रभु, देवता लोग अपने सब कार्यों का स्वामी सूर्य को मानते हैं। आपत्ति में पड़े हुए हो तुम, चाहे जंगल में हो, चाहे तुम भय के अवसर पर हो, चाहे और भी कैसा ही अवसर हो, इस आदित्य हृदय का पाठ करने से सब विपत्तियां दूर होती हैं। और देखो इसका तुम पाठ करो और अब तुम रावण को मार लोगे। इतना कहकर के अगस्त्य ऋषि ने उनको वो ऐन्द्रास्त्र दिया, ऐन्द्रास्त्र दे करके और कहा कि देखो अब आप नष्ट शोक हो गए हो। इतना कहकर अगस्त्य ऋषि चले गए और उस आदित्य हृदय को उन्होंने अपने मन में धारण किया और आचमन करके इसका पाठ किया, और पाठ करने के बाद अब सूर्य भगवान आए और राम जी के कानों में आकर कहने लगे, त्वरे थी, जल्दी करो, अब रावण को मारने में तुम जल्दी करो। इस प्रकार से राम जी महाराज को आदित्य हृदय का पाठ करवा दिया। इधर सारथी रावण को लौट कर लौटा करके वापस युद्ध भूमि की तरफ लाया और उसके घोड़े बड़े उत्कृष्ट कोटि के घोड़े थे, उसका रथ पताकाओं से युक्त था और आकाश के अंदर उसकी पताका उतनी ऊंची गई जैसे आकाश को वो पकड़ने वाला हो। रावण का रथ बहुत जल्दी ही सारथी के द्वारा युद्ध भूमि में लाया गया तो उसके चक्कों की आवाज से गर गर ऐसी आवाज आई, स्वर्ग लोक तक उसकी आवाज का ज्ञान हो रहा था। राक्षस राज रावण ने नरराज श्री राम के दर्शन किए और घूर घूर के राम को देखकर अपने बाण लेकर के जोर से चिल्लाता हुआ कहने लगा कि राम, मैं स्वस्थ होकर अब तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं, मेरे पास शक्ति आ गई है, मैं उस शक्ति से युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत, तुम आओ, तुम मुझसे युद्ध करो। राम ने मातली से कहा कि मातले, ये क्या है, अपसव्यम पतता वेगीन महता पुनः, ये क्या हो रहा है, ये देखो तरह तरह के शकुन हो रहे हैं, ये अपशकुन किसके लिए हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन अपशकुनों को देखकर कहीं बहुत बड़ा कोई ऐसा अपशकुन न हो जाए जिससे कोई किसी प्रकार से हम पर आफत आ जाए, मैं अब रावण को मारना चाहता हूं, ये बहुत देर हो गई, तुम रावण के सामने इस रथ को ले चलो और देखो इन अपशकुनों को देखकर मेरे मन में उत्साह आता है कि ये शायद अब रावण की मृत्यु के लिए हैं। देखो आप अच्छी तरह से जानते हो, बिना किसी भय घबराहट के आप रावण के सामने रथ को ले चलिए, मैं तो आपको केवल याद दिला रहा हूं, आपको कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं। मातली तत्काल अपने घोड़ों के रास को खींच करके और रावण के सामने रथ को ले गए और उधर दशग्रीव रावण ने सामने रथ पर बैठे हुए राम के सामने अपने बाणों को उसी प्रकार से छोड़ना चालू किया। देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि ये द्वैरथ देखने के लिए और रावण के विनाश की आशंका से ये आकाश के अंदर हैं और आकाश के अंदर बैठे बैठे इस युद्ध को देखना चाहते हैं। वहां आकाश में बड़े उत्पात हुए, बदलों से खून की वर्षा हुई और वो भी केवल रावण के रथ के ऊपर हुई, राम जी के रथ पर नहीं हुई। वायु है वो मंडलाकार वायु जिसको हम लोग बथुलिया बोलते हैं, ये बथुलिया, ये रावण उस बथुलिया के अंदर बार बार घिर जाता है, गीद आकर के उसके रथ पर बैठता है और गीद को उड़ाता है, उड़ाने पर वो गीद वापिस ही वहीं आकर बैठता है। रावण की लंका उस समय में जपा कुसुम के फूल की तरह से लाल लाल दिखाई दे रही है, दिन में भी उल्कापात हो रहा है और पृथ्वी है इसमें कंपन हो रहा है, रावण का हृदय भी एकदम उत्साहहीन हो गया है, सूर्य की किरणों में तरह तरह का रंग दिख रहा है, सफेद भी रंग और पीला भी रंग और तांबे का रंग, ऐसे अनेक अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं। अब पहले एक गीद, अब कई गीद आ रहे हैं, कई गीद आकर के रावण के रथ के सामने उल्टी सी कर रहे हैं और उनके गीदों के मुख से आग सी निकल रही है, वे जोर जोर से कठोर शब्द बोलते हैं, गिदड़ियां भी आकर के जोर जोर से बोलती हैं, वायु मिट्टी के कणों को लेकर के बड़े तीखे ढंग से शरीर पर प्रवेश करती है। उसके उस समय में चारों तरफ बदलों की बड़ी दुख भरी आवाज आती है, बड़ा घोर कलरव हो रहा है, अरे सारिका बड़ी मीठी बोलने वाली मैना, वो भी मैना बहुत कड़वी बोलती है, रावण के बाएं हाथ पैर वगैरह सब फड़कने लगे हैं। उस समय में रावण के जो घोड़े थे, घोड़ों के आंखों में आंसू आते हैं और आंखों के अंदर आग सी प्रकट होती है, ये सारे के सारे शकुन रावण के लिए तो बड़े कठोर थे लेकिन राम के लिए बड़े सौम्य थे। उस समय में भाई
इन शकुनों को देख करके रावण ने अपने आप के लिए समझ लिया कि अब मेरी तो मौत है। ऐसा वो समझ करके इधर राम जी महाराज ने देखा कि अब शकुन तो हमारे लिए बड़े अच्छे हुए हैं, अतः राम जी महाराज अपने उत्साह में भर गए। दोनों का द्वैरथ युद्ध होने लगा। देखो भाई अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, हो ज्यादा देर नहीं लगेगी, फिर लगी खुद देर है। अब ये दोनों के दोनों द्वैरथ महायोद्धा आपस में एकदम एक दूसरे पर युद्ध करके टूट पड़े हैं। दोनों ने सोच लिया है कि अब हमारा अंतिम युद्ध है। राक्षस रावण की विजय चाहते हैं, बानर राघव की विजय चाहते हैं, राक्षस और रावण ने रावण के राक्षस और राम की बांदरी सेना सब चुपचाप खड़ी है। कोई किसी पर शस्त्र अस्त्र नहीं चलाता है, सब चुपचाप है। पश्यताम विस्मिता क्षणाम, आंखें फाड़ फाड़ करके युद्ध देख रहे हैं। और राम जी महाराज के मन में उत्साह है कि जेतव्यम, जीत तो भी होगी, और रावण मर्तव्यम इति रावण है। रावण सोचता है कि मेरी तो मौत होगी। एक तो जीत और एक मौत दोनों को अपने मन में विचार कर लिए हैं। फिर भी रावण बड़ा दुस्साहसी है, साहसी नहीं कह सकते, दुस्साहसी है। क्रोध में भरकर वो राम के ऊपर बाणों का संधान करता है और रथ के अंदर रखी हुई शक्ति को लेकर वो राम के ऊपर प्रहार करता है। राम जी महाराज भी बहुत तेजी के साथ दशग्रीव के ध्वज को अपने बाण के द्वारा उसको काट देते हैं। उसकी ध्वजा नीचे गिर जाती है। रावण के मन में फिर क्रोध आता है। राम जी महाराज बड़े वेग से अपने बाण चलाते हैं, उन बाणों के द्वारा उसके घोड़े चलने में असमर्थ हो जाते हैं और वो घोड़े गिरते चले जाते हैं। फिर राम जी महाराज ने बाण छोड़े तो उधर उसने गदाएं छोड़ी, परिक छोड़े, चक्र छोड़े, मुसल छोड़े, बड़े बड़े पर्वत श्रृंग छोड़े, वृक्षों को छोड़ा। ऐसे ऐसे शस्त्र थे जिनसे वृक्ष पैदा पैदा होकर के आए। ऐसे हजारों हजारों प्रकार के शस्त्र राम जी के ऊपर छोड़े और इधर राम जी महाराज कोई घबराए नहीं। और वही राम जी महाराज के मुखमंडल पर तेज है और उन्होंने अपना बाण छोड़ा। उस बाण के द्वारा उसकी सारी माया नष्ट हो गई और फिर दोनों में फिर भयंकर युद्ध हुआ। अन्योन्यम अभिसंधित्य पेतुर धरणी तले, अब दोनों अपने अपने बाणों से नीचे, अपने रथों से नीचे उतर करके पृथ्वी पर आकर के लड़ने लगे, चक्राकार होकर के लड़ने लगे। रावण के घोड़े वगैरह तो सब खत्म ही हो गए और इस प्रकार से उन दोनों का थोड़ी देर तो इतना घमासान युद्ध हुआ कि युद्ध के अंदर न राम दिखता था न रावण दिखता था। देखने वाले लोग समझते थे कि क्या बात है, ये दोनों अंदर ही अंदर जी गए हैं कि मर गए, किसी को कुछ पता नहीं। चारों तरफ बाण जाल हो गया, देखने वालों को कुछ भी पता नहीं चला। और इस प्रकार से अपने चारों तरफ आए हुए बाणों के जाल को देखकर दोनों ही उस समय में अपने बाणों से उस घेराव को छोड़ करके फिर बाहर आए और बाहर आकर के फिर दोनों लड़ने लगे। फिर दोनों अपने अपने रथों में बैठ गए, रथों में बैठ करके फिर लड़ने लगे। रथों को दोनों आपस में जब आए तो भाई घोड़ों के मुंह से यूं टकरा गए और एक रथ के ऊपर चढ़ जाए। इस प्रकार से युद्ध हो रहा था और आपस में नजदीक के साथ बाण छोड़ते हैं और वो सब अपना बचाव करते हैं। उस बचाव के द्वारा कभी कोई बाण किसी के लग जाता है, कभी कोई बाण किसी के लग जाता है, लेकिन रावण भी व्यथित नहीं हुआ, राम भी व्यथित नहीं हुए। रावण का सारथी था, वो भी अपना खूब अच्छे ढंग से घोड़े का संचालन कर रहा था और इधर मातली भी कर रहा था। कोई सूक्ष्म मोह भी दोनों में नहीं आया। एक एक साथ में भाई 20, 30, 60, 100, 1000 बाण राम जी फेंकते थे तो रावण भी फेंकता था। गदा मुसल की खूब बरसातें होने लगी, सब गदाओं को काटा जा रहा था। इस प्रकार से बहुत जब घमासान युद्ध हुआ उस समय में भाई पाताल में रहने वाले प्राणी वो व्यथित हो गए, क्योंकि सागर ही हिलने लग गया। सागर के अंदर पाताल वाले दानव भी वो हिलने लग गए, घबरा गए। सारी पृथ्वी कांपने लग गई और सूर्य का तेज था वो तेज समाप्त सा होने लगा। देवता गंधर्व सिद्ध ऋषि आपस में बैठकर चिंता करने की क्या करें। यदि गऊं का कल्याण करना हो, यदि ब्राह्मणों का कल्याण करना हो, यदि त्रिलोकी में हम लोगों को शांति चाहिए और यदि सब प्राणी प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भाई इस समय राक्षस राज रावण ये राम के बाणों से मरे और राम को विजय प्राप्त हो, ऐसा अपने को उपाय करना है। इस प्रकार से जपन तय करने लगे, तरह तरह से जप करके राम जी महाराज के इस युद्ध को देख रहे हैं। क्या बताएं, राम और रावण का युद्ध इतना भयंकर था, ऐसा कोई युद्ध पहले हुआ नहीं। गगनम गगनाकार है, सागर है सागरोपमय है, राम रावण योर युद्धम राम रावण योर इमय, आकाश आकाश जैसा ही, सागर सागर जैसा ही, ऐसा राम रावण का युद्ध है, ये राम रावण जैसा ही है। ये अनन्वय अलंकार कहलाते हैं, जिसमें कोई उपमा नहीं होती, वो अनन्वय है। इस प्रकार से राम रावण का युद्ध देखा जाने लगा। राम जी महाराज ने अब अपना बाण लिया, बाण लेकर के सीध लगा करके रावण का सिर काटा। परंतु ध्यान से सुनो भाई, अभी ताली मत बजाओ, वो जो सिर उसका कटा और वो सिर कट करके सब लोगों ने पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा देखा, लेकिन रावण के फिर उसकी जगह एक नया सिर पैदा हो गया। उस सिर के पैदा होने के बाद राम जी ने दूसरा सिर काटा, दूसरा सिर कट करके जमीन पर गिर गया, सबने देखा, लेकिन उसकी जगह फिर सिर खड़ा हो गया। इस प्रकार से जितना सिर काटते हैं पुन